जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बन चारी यमुना तीरा बन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बन चारी यमुना तीरा बन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य स्त्रोतर्थ श्री श्रीमदीश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय लेत लीलाउंडर आचार्य शिव दि होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री श्री गौरदाई भगवान की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय गौर प्रेमानंदे All glories to Simple Devotees, All glories to Simple Devotees, All glories to Simple Devotees, All glories to Sri Guru and Gauranga. हाँ बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 8 मेरे पीछे बोलिए। नियतम कुरु कर्म त्वम् कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। नियतम कुरु कर्म त्वम् कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। नियतम कुरु कर्म त्वम् कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। शब्दार्थ बोलिए। नियतम नियत कुरु करो कर्म कर्तव्य त्वम तुम कर्म कर्म करना ज्याय श्रेष्ठ ही निश्चय ही अकर्मण काम ना करने की अपेक्षा शरीर शरीर का यात्रा पालन निर्वाह अपि भी च भी ते तुम्हारा न कभी नहीं प्रसिद्धि सिद्ध होगा अकर्मणः बिना काम के। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकायं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंदो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaye Krishna Prestaye Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesa Sunyavadi Paschata Desa Tarine Islok phir se nikaliye Islok ko phir se samjhenge Bhagwan keh rahe hain नियतम कुरु कर्म तुम कर्म ज्यायो है कर्मणः कि जो नियत कर्म है मतलब क्षत्रिय स्वभाव से जो नियत हो चुका है कर्म उस कर्म को तुम करो क्यों कर्म ज्यायो है कर्मणः कर्म ज्यादा अच्छा है करना कर्म ना करने की तुलना में कर्म करना ज्यादा अच्छा है शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्ध है कर्मणा अगर कर्म नहीं करोगे तो शरीर की यात्रा जीवन निर्वाह भी पूरा नहीं होगा है? तो इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन का प्रश्न था क्या प्रश्न था अर्जुन ने पूछा था ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मदा बुद्धिर् जनार्दन कि हे जनार्दन आपके मत में अगर बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ है कर्म की तुलना में सत्यम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव तो हे केशव मुझे आप घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं है ना तो अर्जुन का ये विचार था कि बुद्धि अगर भगवान मानते हैं कि श्रेष्ठ है कर्म की तुलना में है ना तो अर्जुन यही सोच रहे कि बुद्धि का मतलब ये है कि कर्म ना किया जाए तो यहां पर भगवान अर्जुन के प्रश्न का ठीक उत्तर दे रहे हैं ठीक ठीक उत्तर दे रहे हैं क्या कह रहे हैं कि कर्म करना ज्यादा अच्छा है कर्म ना करने की तुलना में उसी को ही बुद्धि भगवान ने बतलाया था लेकिन समझने में थोड़ा गलती हुई अर्जुन के इसलिए अर्जुन ये सोच रहे हैं कि बुद्धि का मतलब है कर्म ना करना तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं श्रील प्रभुपाद की ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं छद्म ध्यानी या व्यवसायी व्यक्ति व्यवसायी मतलब किस बात का व्यवसाय करते हैं धंधा किस बात का धंधा करते हैं दूसरों को धोखा देने का ना दिखावा करते हैं झूठा दिखावा करते हैं है? ध्यान करने का एक झूठा दिखावा है, है? तो ये झूठा ध्यान जिसे मिथ्याचार कहा जाता है, है? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कैसे बहुत लोग हैं तो दिखाते हैं है? कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है श्री कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करें अर्जुन गृहस्थ थे और एक सेना नायक थे अतः उनके लिए श्रेयस्कर था कि वे उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करें गृहस्थ और क्षत्रिय गृहस्थ आश्रम है और क्षत्रिय वर्ण है चार वर्णों में क्षत्रिय वर्ण है अर्जुन का और चार आश्रमों में गृहस्थ आश्रम है अर्जुन का है? तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि ज्यादा अच्छा यही है कि अर्जुन जिस गृहस्थ आश्रम में है उसके नियमों का पालन करें और जिस क्षत्रिय वर्ण में है उसके स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करेंगे। आगे प्रभु लिखते हैं, ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। हाँ, मतलब भौतिक कामनाएं धीरे धीरे जाएंगी। ऐसा नहीं कि एकदम से जो है कोई व्यक्ति सन्यासी होने का दिखावा करे, ऊपर से तो विरक्त हो जाए और अंदर क्या है, वासनाएं, है ना। आगे प्रभु लिखते हैं, देह निर्वाह के लिए किए गए तथा कथित त्याग सन्यास का अनुमोदन ना तो भगवान करते हैं और ना कोई धर्मशास्त्र ही। हाँ, शरीर निर्वाह के लिए नहीं सन्यास लेना, है ना। भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन से कि शरीर का निर्वाह नहीं होगा इस प्रकार से तुम्हारा, है ना। तो आजकल बहुत जो है पाखंड फैला हुआ है कलयुग में, है उधर निमित्तम बहुकृत वेश, पेट भरने के लिए बहुत से वेश आजकल लोग बनाए फिरते हैं। शंकराचार्य जी ने कहा है, जटिलो मुंडी लुंठित केश कासायांबर बहुकृत वेश, पश्यन्न पित न पश्यति मूढ़ो हृदर निमित्तिम बहुकृत वेश। जटिलो, कोई जटिल है, जटिल का मतलब जटाएं धारण कर ली हैं, किस लिए, पेट भरने के लिए, है? पेट भरने के लिए वेश बनाया है क्या, जटाओं जटाएं धारण की, जटिलो। जटिल का मतलब क्या है, कुटिल भी होता है, जटिल कुटिल सरल नहीं है व्यक्ति, बड़ा जटिल है, बड़ा कुटिल है, और जटाएं भी धारण किए हैं इसलिए भी जटिल है और दिल से भी बहुत जटिल है, है ना। जटिलो मुंडी, और कोई व्यक्ति मुंडी हो जाता है यानी सिर मुड़ा लेता है, और लुंठित केश, और किसी ने जो ना केशों को जो ना जटा जूट बनाया हुआ है, लुंठित केश, कांस आए अंबर गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं, बहुकृत वेश। और भी कहा जाता है, मोई नारी घर संपत्ति नासी, पत्नी मर गई और घर की संपत्ति नष्ट हो गई तो फिर क्या किया उन्होंने, मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। तो अब खाना घर में कोई बनाने वाला है नहीं और पैसा भी नहीं है तो सिर मुड़ा करके सन्यासी हो गए, किस लिए, खाने की जो है सुविधा मिले, है ना, बैठे बैठे अपना भोजन मिलता रहेगा। इस प्रकार से बहुत से लोग हैं, तो यहाँ पर समर्थन भगवान गीता में नहीं कर रहे हैं इस प्रकार से, है कि तुम कुछ कर्म ना करो और इस प्रकार से शरीर यात्रा का निर्वाह होता रहे, है दिखाने के लिए सन्यासी बन जाए। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ करना होता है, भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है, ठीक है ना। ऐसे सन्यास लेना ठीक नहीं है, अगर भौतिक कामनाएं जो है अगर हृदय में बनी हुई हैं तो सन्यास लेना सही नहीं है। ऐसे सन्यासी के लिए उचित है कि वो आत्महत्या कर ले, कि सन्यास लेने के बाद और फिर वो सांसारिक कामनाएं करता है तो उसी प्रकार से जैसे कि कोई व्यक्ति उल्टी करके भोजन की उल्टी करता है फिर उसी को खाता है, उसको कहते हैं वानतासी, है ना। तो ये बहुत ही निंदनीय बात है, कुत्ता होता है, कुत्ता उल्टी कर देता है फिर उसको खाता है, है ना। तो ये जो ना कुत्ते का कर्म है, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये ठीक नहीं है कि कर्म का त्याग कर दे एकदम से और हृदय में वासनाएं बनी हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है, ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी योगी बनने और सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करे। अन्यों पर जीवित रहना मतलब पैरासाइट, परोपजीवी, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ है। अब कई बातें हैं महाभारत में, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर महाराज पूरी पृथ्वी के शासक बन गए, तो युधिष्ठिर महाराज को भी इसी प्रकार का जो है अब अज्ञान हुआ। जैसे अर्जुन सोच रहे हैं कि बस भिक्षा वृत्ति करेंगे, है ना, लेकिन अंतर केवल यही है कि युधिष्ठिर महाराज को हुआ ये अज्ञान युद्ध के बाद, और अर्जुन को था युद्ध के पहले। देखिए युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं अर्जुन से, कहते हैं युधिष्ठिर अर्जुन से क्या कहते हैं, अभी देखो युद्ध पे विजय प्राप्त हो चुकी है और राज्य प्राप्त हो गया है, अब युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि हम संन्यास लेंगे। कैसी बात हुई, युधिष्ठिर क्या कहते हैं अर्जुन से, युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन थोड़ी देर तक मन को एकाग्र करके मेरी बात सुनो और उस पर विचार करो, फिर तुम भी मेरी बात का अनुमोदन करोगे। युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तो गीता सुन चुके हैं युद्ध के पहले ही, लेकिन युधिष्ठिर ने तो नहीं सुनी गीता, तो अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात सुन लोगे तो तुम भी फिर मेरी बात को मान लोगे कि मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही कह रहा हूं क्या। तो अर्जुन क्या कहते हैं, नहीं युधिष्ठिर क्या कहते हैं, क्या तुम्हारे कहने से मैं उस मार्ग पर ना चलूं जिस पर श्रेष्ठ पुरुष सदा ही चलते आए हैं, नहीं मुझसे ये ना होगा, मैं तो सांसारिक सुखों पर लात मारकर अवश्य उसी मार्ग पर चलूंगा और वन में फल मूल खाकर कठोर तपस्या करूंगा। सवेरे और सायंकाल स्नान करके विधिवत अग्नि में आहुति डालूंगा और शरीर पर मृगछाला और बलकल वस्त्र धारण कर मस्तक पर जटा रखूंगा। सर्दी गर्मी हवा और भूख प्यास का कष्ट सहन करूंगा और शास्त्रोक्त विधि से तपस्या करके अपने शरीर को सुखा डालूंगा। एकांत में रहकर तत्व का विचार किया करूंगा और कच्चा पक्का जैसा भी फल मिल जाएगा उसी को खाकर जीवन निर्वाह करूंगा। इस प्रकार वनवासी मुनियों के कठोर से कठोर नियमों का पालन करके इस शरीर की आयु समाप्त होने की बाट देखता रहूंगा, अथवा मुनि वृत्ति से रहता हुआ मस्तक मुड़ा लूंगा और एक एक दिन एक एक वृक्ष से भिक्षा मांगकर देह को दुर्बल कर डालूंगा। वृक्षों से भिक्षा मांगूंगा। प्रिय और अप्रिय का विचार छोड़कर पेड़ के ही नीचे निवास करूंगा, किसी के लिए ना शोक करूंगा और ना हर्ष करूंगा, निंदा और स्तुति को समान समझूंगा, आशा और ममता को धो बहाकर निर्द्वंद हो जाऊंगा, कभी किसी भी वस्तु का संग्रह ना करूंगा, आत्मा में ही रमण करता हुआ सदा प्रसन्न रहूंगा, दूसरों के साथ कभी कोई बात नहीं करूंगा तथा अंधों गूंगों और बहरों की तरह विचरता रहूंगा। समझ रहे हैं? चर और अचर रूप में जो चार प्रकार के जीव हैं उनमें से किसी की भी हिंसा नहीं करूंगा, सब प्राणियों पर मेरी समान बुद्धि होगी, ना तो किसी की हंसी उड़ाऊंगा ना किसी को देखकर भौहें टेढ़ी करूंगा, चेहरे पर सदा प्रसन्नता छाई रहेगी, सब इंद्रियों को पूर्ण रूप से बस में रखूंगा, कोई भी राह पकड़कर आगे बढ़ता रहूंगा, किसी से भी रास्ता नहीं पूछूंगा, किसी खास देश या दिशा में जाने की इच्छा ना रखूंगा, यात्रा का कोई विशेष उद्देश्य ना होगा, ना आगे की उत्सुकता होगी, ना पीछे फिरकर देखूंगा, चित्त में कोई विकार नहीं रहेगा, अंतरात्मा पर दृष्टि रखूंगा और देहाभिमान से रहित हो जाऊंगा, भिक्षा थोड़ी मिली या स्वादहीन इसका विचार नहीं करूंगा, एक घर से भिक्षा ना मिली तो दूसरे घर से मांगूंगा, वहां भी ना मिलने पर तीसरे घर से, इस प्रकार ना मिलने की दशा में सात घरों तक मांगूंगा, आठवें पर नहीं जाऊंगा, मिले ना मिले सात घरों से ज्यादा भिक्षा नहीं मांगूंगा। जब घरों में धुआं निकलना बंद हो गया हो, मूसल रख दिया गया हो, अंगारे घुस गए हो, सब लोग खा पी चुके हों, परोसी हुई थाली को इधर उधर ले जाने का काम समाप्त हो गया हो, भिखमंगे भिक्षा लेकर लौट गए हों, ऐसे समय में मैं एक ही वक्त भिक्षा के लिए जाया करूंगा। सब ओर से स्नेह का बंधन तोड़कर पृथ्वी पर विचरता रहूंगा। ना जीवन से राग होगा और ना मृत्यु से द्वेष होगा। यदि एक मनुष्य मेरी एक बाह वसूली से काटे और दूसरा दूसरी बाह पर चंदन चढ़ाए तो मैं उन दोनों पर समान भाव ही रखूंगा। ना एक का मंगल चाहूंगा ना दूसरे का अमंगल। केवल शरीर निर्वाह के लिए पलकों के खोलने मीचने तथा खाने पीने आदि का कार्य करूंगा, परंतु इसमें भी आसक्ति नहीं रखूंगा। संपूर्ण इंद्रियों के कार्यों से उपरत होकर मन के संकल्प को अपने अधीन रखूंगा। बुद्धि के बल का परिमार्जन करके सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त रहूंगा। इस प्रकार बीत राग होकर विचरने से मुझे अक्षय शांति मिलेगी। इस अपार संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि और वेदनाओं का आक्रमण होता ही रहता है। इसके कारण यहाँ का जीवन कभी सुस्त नहीं रहता। इसे तो त्यागने में ही सुख है। आज बहुत दिनों के बाद मुझे विशुद्ध विवेक रूपी अमृत प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा मैं अक्षय अभिकारी एवं सनातन स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ। अतः उपर्युक्त धारणा के द्वारा निरंतर विचरता हुआ मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि और वेदनाओं से भरे हुए इस शरीर का अंत करके निर्भय पद को प्राप्त हो जाऊंगा। देखा युधिष्ठिर महाराज का कितना अच्छा विचार लगता है ना, कितना अच्छा विचार लगता है। अब देखिए युधिष्ठिर को कई लोग समझाते हैं। तो नकुल ने युधिष्ठिर को समझाया। नकुल जानते हैं, छोटे भाई हैं पांडवों में नकुल सहदेव। नकुल कहते हैं कि हे महाराज, आपको यह समझना चाहिए कि देवता भी वैदिक कर्मों और उनके फलों में विश्वास करते हैं। वैदिक कर्मों में, तो आप वैदिक कर्मों को मत छोड़िए। नकुल कहते हैं कि देवता भी विश्वास करते हैं वैदिक कर्मों में। जो वेदों की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं उन्हें तो महान नास्तिक मानना चाहिए। आप जो बात बोल रहे हो ये वेदों के विरुद्ध है ना, और वेदों के विरुद्ध है, अगर कोई चले तो क्या है, वो नास्तिक है। वैदिक कर्मों का परित्याग करके कोई भी उत्तम गति नहीं प्राप्त कर सकता। वेद वेत्ता विद्वान कहते हैं कि जो धर्म पूर्वक उपार्जन किए हुए धन का यज्ञ आदि कर्मों में उपयोग करता है वो शुद्ध आत्मा मनुष्य ही त्यागी है। धन संपत्ति ऐसे मतलब छोड़ दें, फेंक दें और त्यागी बन जाएं तो वो अच्छा नहीं है। बल्कि असली त्याग क्या है, धन संपत्ति को यज्ञ आदि कर्मों में लगाया जाए, है ना। जैसे इस्कॉन में धन लगाया जाता है, किसमें, प्रचार में, प्रचार कार्य में, प्रसाद वितरण में और किताबों की छपाई में, है ना, मंदिर के निर्माण में। तो पैसा हम लेते हैं और पैसे का इस प्रकार उपयोग करते हैं, तो ये जो है ना असली त्याग यही है। फिर नकुल कहते हैं, घर छोड़कर जंगल में चले जाने से ही कोई त्यागी नहीं हो जाता, ठीक है ना। जंगल में जाकर भी जिसके हृदय में कामना जागृत होती है, देखो घर छोड़ के जंगल चले गए और जंगल में फिर कामना जागृत होती है, उसके गले में यमराज क्या करते हैं, मौत का फंदा डालते हैं। जंगल में जाकर के भी कामना जागृत होती है, है ना, तो उसके गले में यमराज क्या करते हैं, मौत का फंदा डाल देते हैं। सम दम धैर्य सत्य शौच सरलता यज्ञ धारणा तथा धर्म, इन सब का निरंतर पालन ऋषियों के लिए बताया गया है। ये ऋषियों के लिए है। और गृहस्थों के लिए क्या है, पितरों देवताओं और अतिथियों का पोषण तो गृहस्थ आश्रम में ही होता है। केवल इसी आश्रम में धर्म अर्थ और काम ये तीनों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं।
इस आश्रम में वेद विहित विधि का पालन करने वाले त्यागी का कभी विनाश नहीं होता। वह पारलौकिक उन्नति से कभी वंचित नहीं होता। कुछ ऋषि स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले होते हैं, कुछ ज्ञान यज्ञ में तत्पर रहते हैं, और कुछ लोग मन में ही ध्यान रूपी महान यज्ञ करते हैं। चित्त को एकाग्र करना जो साधन मार्ग है, उसका आश्रय लेने वाला द्विज ब्रह्मभूत हो जाता है। देवता भी उसके दर्शन के लिए उत्सुक रहते हैं। लेकिन जिस पर कुटुंब का भार हो, उस राजा के लिए गृह त्याग का विधान नहीं देखने में आता। कौन कह रहा है? नकुल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? राजा के लिए गृह त्याग का विधान नहीं है, कुटुंब का भार है उसके ऊपर। उसे तो राजसूय यज्ञ करना चाहिए, अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, या सर्वमेध यज्ञ करना चाहिए, या और कोई शास्त्रीय यज्ञ करके उसमें धन का दान करना चाहिए। राजा के लापरवाही से लुटेरे प्रबल होकर प्रजा को लूटने लगते हैं। उस अवस्था में यदि राजा ने प्रजा को शरण नहीं दी, तो उसे कलयुग का ही स्वरूप समझना चाहिए। वो राजा क्या है? कलयुगी राजा, कलयुग है वो। जो दान नहीं देते, शरणागतों की रक्षा नहीं करते, वे राजा पाप के भागी होते हैं। उन्हें दुख ही दुख भोगना पड़ता है, सुख तो कभी नसीब नहीं होता। भीतर और बाहर जो कुछ भी मन को फंसाने वाली चीजें हैं, उन्हें छोड़ने से मनुष्य त्यागी बनता है कि मन ना फंसे, ठीक है ना। सिर्फ घर छोड़ देने से त्याग की सिद्धि नहीं होती। जो शास्त्रीय विधान में सदा लगा रहता है, उसकी कभी हानि नहीं होती। हे महाराज, पूर्ववर्ती राजाओं ने जिसका सेवन किया है, उस धर्म में स्थित रहकर